नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गया के कुरारू में एनडीए के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने भी एनडीए के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। और ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा, बाजारों में बढ़ी रौनक। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गया के कुरारू में एनडीए के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने भी एनडीए के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में कई असंभव कामों को पूरा किया गया। भाजपा नेता ने अनुच्छेद 370, राम मंदिर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और 3 तलाक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। श्री शाह ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजद और कांग्रेस ने लंबे समय तक राजनीति की, लेकिन उन्हें भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूँ कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे। सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
श्री शाह ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार के लोग 40 में से 40 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलाकर इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी।
सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी संबोधित किया। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज देश भर में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सभा को विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी समेत हिंदी गठबंधन के कई नेताओं ने भी संबोधित किया। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी किशनगंज लोकसभा सीट की। किशनगंज बिहार के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मुस्लिम बहुल किशनगंज संसदीय क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद आजाद जदयू के मुजाहिद आलम और AIMIM के अख्तरुल ईमान के बीच कड़ी टक्कर है। इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 68% मतदाता मुस्लिम है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में उतारते हैं। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में विपक्षी गठबंधन को केवल किशनगंज सीट पर सफलता मिली थी। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद आजाद इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। किशनगंज का इलाका सुरजापुरी के नाम से जाना जाता है। भाषा भी सुरजापुरी है और अधिकतर मतदाता भी सुरजापुरी है। तीनों मुख्य प्रत्याशी भी सुरजापुरी बिरादरी से ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में उनके 3 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इस समय बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचादमन और 22 विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक है। वहीं किशनगंज से कांग्रेस और अमौर से AIMIM के विधायक है। इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। NDA के नेता जहां विकास, मोदी की गारंटी और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं NDA गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, आपदा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा है। सीमांचल की हकमारी को लेकर AIMIM लोगों के बीच अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। इस बार यह देखना काफी रोचक होगा कि कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर किस दल के प्रत्याशी को जीत मिलती है। आकाशवाणी समाचार के लिए किशनगंज से विशाल कुमार।
देश में ट्रांसजेंडर समुदाय को मताधिकार देने के लिए संघर्ष की यात्रा अनेक चुनौतियों से भरी रही है। इस समुदाय के संघर्षों और विजय पर पेश है एक रिपोर्ट।
भारत के इतिहास में अप्रैल 2014 एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को कानूनी रूप से तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता देने वाले ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस संघर्ष का बीज 2003 में बोया गया था, जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कटरी के मेयर पद पर ट्रांसजेंडर महिला कमला चांद के चुनाव को रद्द कर दिया था। 2004 में अधिवक्ता ए रजनी और ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता प्रिया बाबू ने सामाजिक स्थितियों में बदलाव लाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में ट्रांसपर्सन के मतदाता पहचान पत्र की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। चुनौतियों के बीच इनकी जीत हुई। इस ऐतिहासिक जीत से ट्रांसजेंडर समाज को न केवल नागरिकता का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की शुरुआत हुई। इस लोकसभा चुनाव में 48,000 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मतदान के पात्र हैं। अर्पिता चौधरी की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज के लिए आदर्श कुमार, नई दिल्ली।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 9 मामले दर्ज किए गए, वहीं 5 लाख रुपए से अधिक बरामद किए गए। साथ ही भारी मात्रा में शराब और मादक पदार्थ भी जब्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के संक में आप सुनेंगे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। इस लोकसभा क्षेत्र में जिले के हल्लाकी, बेनीपट्टी, बीसपी और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा दरभंगा जिला का केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है।
चुनाव की तैयारियां आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग कर रहे हैं, तैयारी पूरी है। कुल लगभग 274 सेक्टर ऑफिसर्स पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ SSB का चेक पॉइंट स्थापित किया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा एक्साइज की भी चेक पॉइंट है। इस प्रकार से कुल 34 स्टैटिक सर्विलेंस टीम हमारी गठित है, लगातार हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको चिन्हित करके धारा 107 के तहत लगभग 10,000 व्यक्तियों को बाउंड डाउन किया गया है। सभी मधुबनी जिलावासियों से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के लोकसभा निर्वाचन में हिस्सा लें।
पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
देखिए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर और उसके साथ में फोर्स की हम लोगों ने तैनाती की हुई है। उनका काम है कि सभी क्षेत्रों में जो सेक्टर है उसमें घूम घूम करके किसी तरह का गैर कानूनी कार्य हो रहा है या NCC का वायलेशन हो रहा है उस पर कार्रवाई करना, ये सारा कार्य किया जा रहा है। खासकर के बॉर्डर एरिया में चेक पोस्ट बनाया हुआ है, ताकि उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और SST की टीम भी है जो औचक तरीके से कहीं भी छापेमारी कर रही है।
मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नए मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है।
मेरा नाम आयुष है और मैं इस वर्ष होने वाले लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार अपना बहुमूल्य वोट गिराने वाला हूँ। मैं एक यूथ होने के नाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने एक वोट की महत्व को समझें और एक ऐसे सांसद का चुनाव करें जो आपकी परेशानियों को समझे, आपके हित के लिए काम करे।
मेरा नाम नेहा है और पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का। प्लीज वोट गिराइए क्योंकि यूथ का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है।
इधर राजनीतिक दलों ने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज पटना में लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को लेकर 300 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। ईद की नमाज अदा करने के लिए राजधानी पटना के गांधी मैदान समेत सभी ईदगाहों में तैयारी पूरी कर ली गई है। कल गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। ईद को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं बाजारों में भी खरीदारी को लेकर रौनक बढ़ गई है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से सौभाग्य, आरोग्य और अभय की प्राप्ति होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार कौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि हो सकती है।
आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिलों में एक या दो स्थानों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष जिलों का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मधुबनी जिले के देवधा थाना क्षेत्र और रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 30 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीच थाना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 1 तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के सिसवा गांव स्थित एक तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के लड़ियाटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत विरोजपुर टांड से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कामाथाम से पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गया के कुरारू में एनडीए के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने भी एनडीए के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। और ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा, बाजारों में बढ़ी रौनक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।